शांति। आज की कथा का शीर्षक है कि मृत्यु से भय कैसा। राजा परीक्षित को श्रीमद् भगवत पुराण सुनाते हुए, जब सुखदेव जी महाराज को 6 दिन बीत गए और तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु होने का 1 दिन शेष रह गया, तब भी राजा परीक्षित का शोक और मृत्यु का भय दूर नहीं हुआ। अपने मरने की घड़ी निकट आती देखकर राजा का मन क्षुब्ध हो रहा था। तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को एक कथा सुनानी आरंभ की। राजन, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया। संयोगवश वह रास्ता भूलकर बड़े घने जंगल में जा पहुंचा। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात्रि पड़ गई और भारी वर्षा पड़ने लगी। जंगल में सिंह, बाघ, व्याघ्र आदि बोलने लगे। वह राजा बहुत डर गया और किसी प्रकार उस भयानक जंगल में रात्रि बिताने के लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा। रात के समय में अंधेरे होने की वजह से उसे एक दीपक दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उसने एक गंदे बहेलिए की झोपड़ी देखी। वह बहेलिया ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोपड़ी में ही एक और उसने मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था। अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। बड़ी गंदी, छोटी, अंधेरी और दुर्गंध युक्त वह झोपड़ी थी। उस झोपड़ी को देखकर पहले तो राजा ठिठका, लेकिन पीछे उसने सिर छिपाने का कोई और आश्रय न देकर उस बहेलिए से अपनी झोपड़ी में रात भर ठहर जाने देने के लिए प्रार्थना की। बहेलिए ने कहा कि आश्रय के लोभी राहगीर कभी कभी यहां आ भटकते हैं। मैं उन्हें ठहरा तो लेता हूं, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे बहुत झंझट करते हैं। इस झोपड़ी की गंध उन्हें ऐसी भा जाती है कि फिर वे उसे छोड़ना नहीं चाहते और इसी में ही रहने की कोशिश करते हैं एवं अपना कब्जा जमाते हैं। ऐसे झंझट में मैं कई बार पड़ चुका हूं, इसलिए मैं जब किसी को भी यहां नहीं ठहरने देता, मैं आपको भी इसमें नहीं ठहरने दूंगा। राजा ने प्रतिज्ञा की कि वह सुबह होते ही इस झोपड़ी को अवश्य खाली कर देगा। उसका काम तो बहुत बड़ा है, यहां तो वह संयोगवश भटकते हुए आया है, सिर्फ एक रात्रि ही काटनी है। बहेलिया ने राजा को ठहरने की अनुमति दे दी। बहेलिया ने सुबह होते ही बिना कोई झंझट किए झोपड़ी खाली कर देने की शर्त को फिर दोहरा दिया। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोया रहा। सोने पर झोपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसी बस गई कि सुबह उठा तो वही सब परम प्रिय लगने लगा। अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को भूलकर वह वहीं निवास करने की बात सोचने लगा। वह बहेलिया से अपने और ठहरने की प्रार्थना करने लगा। इस पर बहेलिया भड़क गया और राजा को भला बुरा कहने लगा। राजा को अब वह जगह छोड़ना झंझट लगने लगा और दोनों के बीच उस स्थान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कथा सुनकर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित बताओ, उस राजा का उस स्थान पर सदा रहने के लिए झंझट करना उचित था? परीक्षित ने उत्तर दिया, प्रभु वो कौन राजा था उसका नाम तो बताइए। वह तो बड़ा भारी मूर्ख जान पड़ता है, जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर एवं अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियत अवधि से ही अधिक रहना चाहता है उसकी मूर्खता पर तो मुझे आश्चर्य होता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजा परिचित, वह बड़े भारी मूर्ख तो स्वयं आप ही हैं। इस मलमूत्र की गठड़ी देह शरीर में जितने समय आपकी आत्मा को रहना आवश्यक था वह अवधि तो कल समाप्त हो रही है। अब आपको उस लोक जाना है जहां से आप आए हैं, फिर भी आप झंझट फैला रहे हैं और मरना नहीं चाहते, क्या यह आपकी मूर्खता नहीं है? राजा परिचित का ज्ञान जाग पड़ा और ये बंधन मुक्ति के लिए सहर्ष तैयार हो गए। भाई बहनों, वास्तव में यही सत्य है, जब एक जीव अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है तो अपनी माँ की कोख के अंदर प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे यहाँ इस कोख से मुक्त कीजिए, मैं आपका भजन सुवर्णन करूंगा, गायन करूंगा। और जब वह जन्म लेकर इस संसार में आता है तो उस राजा की तरह हैरान होकर सोचने लगता है कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ, और पैदा होते ही रोने लगता है। फिर उस गंध से भरी झोपड़ी की तरह उसे यहाँ की खुशबू ऐसी भा जाती है कि वह अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर यहाँ से ही जाना नहीं चाहता। अतः संसार में आने के अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचाने और उसको प्राप्त करें, ऐसा कर लेने पर आपको मृत्यु का भय नहीं सताएगा। तो ये शरीर हमें नियत समय के लिए इतना वर्ष, इतने महीने, इतने हफ्ते, इतने दिन, इतने मिनट, इतने सेकंड लेना है करके वो निश्चित पूर्व भावी है। परंतु जब हमें इस देह से आसक्ति पैदा हो जाती है, लोभ हो जाता, मोह हो जाता, अहंकार हो जाता, और भी इससे अनेकों ऐसे किस्म के लगाव झुकाव की बातें हो जाती हैं, तो इससे छोड़ते समय इतना कष्ट प्रतीत होता है कि कैसे मैं इस शरीर को छोड़ूं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस देह और देह के वस्तु वैभव से देह का मोह नष्ट करना, वस्तु वैभव का ममता को नष्ट करना, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसीलिए कहा जाता है कि नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा, को हम इससे मोह को मिटा दें और अपने परम प्रभु की स्मृति को हम अपने जीवन का सच्चा सहारा बना लें, तो उनकी स्मृति से ही हमें इसका मोह नष्ट होगा, तब हम सहज सहज से अपनी मृत्यु पर विजयी हो सकेंगे और मृत्यु हमारे लिए कोई भय का विषय वस्तु नहीं होगा, हम निर्भय होकर के शरीर का परित्याग कर सकेंगे। ओम शांति।